ओम शांति। इस धरती पर सबसे प्यारा कौन सा तीर्थ है, क्यों? इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा, क्योंकि यह परमात्मा अवतरण भूमि है। स्वयं परमात्मा के कदम, स्वयं परमात्मा के पग इस भूमि को स्पर्श किए हैं। यह भूमि अपने साथ ईश्वरीय प्रकंपन दिए हुए है। तो परमात्मा अवतरण भूमि, जहां जहां जो जो अवतार गए हैं संसार में, जिस जिस स्थान पर वो रहे, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने कार्य किया जीवन का, और जहां उन्होंने शरीर छोड़ा, वो सभी स्थान तीर्थ बन गए हैं संसार में। सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यह है, क्योंकि स्वयं भगवान यहां अवतरित हुए हैं। ये परमात्मा अवतरण भूमि है। प्रभु पिता की पदरामनी इस भूमि पर हुई है, इस बात को कभी भूलना नहीं है। बाबा ने कहा है ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मधुबन। परमानेंट, चाहे कोई भी कहीं पर भी ब्राह्मण हो, सबका एड्रेस कौन सा है? घर, भगवान का घर। कल दादी कह रहे थे ना, भगवान का घर और दाता का दर मधुबन है। ओम शांति भवन में क्लास चल रहा है, दादी कह रहे थे कि सभी आत्माओं को जैसे खींच होती है, जितनी त्याग और जितनी तपस्या ओम शांति भवन बनाने में लगी है, उतनी शायद ही किसी और इमारत में लगी होगी यज्ञ की। तो परमात्मा अवतरण भूमि है यह। और क्यों ये महान तीर्थ है संसार का? यहां रहते हुए इस स्थान के महत्व को अपने हृदय में कम नहीं कर देना, नहीं तो जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है उस स्थान का महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। बार बार स्वयं को याद दिलाना ये स्थान कौन सा है। धन्य भूमि है ये, धन्य भूमि, पुण्य भूमि, जहां अवतारों का जन्म हुआ, उस पर चौपाइयां बनी है, कहानियां बनी है, गीत बने हैं, संगीत, भजन, कीर्तन, क्या क्या है उन तीर्थों के। तो ये तो सर्व महान तीर्थ है, तीर्थराज है ये आबू। ऐसे तीर्थराज पर हम सब क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। इस मधुबन की महिमा निरंतर अपने मन मंदिर में गाते रहना, हम कहां हैं, हम कहां आए हैं, ये स्थान कौन सा है, ये किसकी भूमि है। संसार का जो आदि पिता है, संसार की जो आदि माता, उनके चरणों से पुनीत हुई है ये भूमि। इस यज्ञ की जो परम तपस्विनी आत्माएं हैं, इस यज्ञ की जो महानतम आत्मा, इस सृष्टि की महानतम आत्माएं जो है, जिनके आधार पर यह सृष्टि चलने वाली है, उनके पगधूलि से प्रांजल हुई है यह भूमि। तो इस भूमि का महत्व कभी भी कम होने नहीं देना। निरंतर दिन में एक बार अपने आप को स्मरण कराना कि मैं किस भूमि पर हूं। यह है कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, कर्मातीत भूमि, चरित्र भूमि है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है, महायज्ञ है, तपस्या भूमि है, महातपस्या भूमि है। जो यहां तपस्या की जा सकती है, ऐसी तपस्या संसार में कहीं संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर वाइब्रेशंस बनाए बनाए वाइब्रेशंस है, बने बनाए प्रकंपन है यहां पर तपस्या के। तो यहां पर स्थिति बनाना इतनी मुश्किल बात नहीं है। आते ही अशरीरीपन का अनुभव होता है। यहां पर चारों ओर वातावरण अव्यक्त है और उसको अव्यक्त बनाए रखना ये भी हमारा कर्तव्य है। हर गली में हर कोने में अव्यक्त प्रवाह बह रहा है यहां पर, चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे आंगन हो या और कोई भी स्थान। यहां का कण कण में प्यूरिटी के प्रकंपन है। उस प्रकंपन को पकड़ने के लिए हमारी स्थिति भी उतनी ही श्रेष्ठ ही चाहिए। तो ये तपस्या भूमि है, महातपस्या भूमि है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है, संसार के लिए लाइट हाउस है, संसार के लिए माइट हाउस है, बेहद का एयरपोर्ट है। यहां आकर ही आत्माएं उड़ान भरती है। बेहद का क्लब है, इस क्लब में महान आत्माओं का संगठन है। आत्मा परमात्मा का इस क्लब में मिलन होता है। बेहद का धोबी घाट है, और क्या है, विशाल भवन है ये, इंद्रप्रस्थ है ये, और क्या है, जिसको जो नाम याद आते हैं सब बताओ। केवल नाम ही याद करो तो वो भी योगी है। बाबा के कमरे में बैठकर अपने आप से केवल ये प्रश्न पूछो, मैं हूं कहां, कौन सा स्थान है ये, तो भी स्थिति एकाग्र हो जाएगी, मन चित्त एक रूप हो जाएगा, उसकी यादों में खो जाएंगे। उसको याद करना, उसके उस घर को याद करना या उसके इस घर को याद करना, बाप अपने भूमि निवासियों को मिलने आए हैं। भगवान इन आत्माओं को देखकर खुश होते हैं। आज की मुरली में अगर भगवान खुश हो जाए तो और क्या चाहिए। भगवान खुश होते हैं यहाँ की आत्माओं को देखकर। दिल पर भी है तो चूल पर भी है, डबल तख्त है, डबल ताज है। पवित्रता का ताज तो हरेक को होना ही चाहिए, गुणों का ताज तो हरेक को होना ही चाहिए। 36 प्रकार का भोजन खाते हो तो शर्त है एक, जबरदस्त शर्त है एक। राजू भाई कौन सी शर्त है? 36 गुण भी धारण करने पड़ेंगे। मुकुट में 36 हीरे चाहिए, एक एक हीरे की चमक दूसरों को भी चमकाने वाली हो, इतनी बड़ी शर्त है। आज मुरली में कहा है बाप पढ़ाते ही रहेंगे, पढ़ाई पढ़ाने आए हैं और पढ़ाते रहेंगे, और पढ़ाई अर्थात समझ। तुम सब हो डबल समझदार, डबल समझ, ऐसे डबल समझदार हम आत्माएं हैं। तो ये मधुबन क्या है, चार धाम, समझदार आत्माओं की भूमि, श्रेष्ठ आत्माओं की भूमि, महान आत्माओं की भूमि, निश्चय बुद्धि आत्माओं की भूमि, श्रेष्ठ आत्माओं की भूमि, ऐसे सत्यवादियों की भूमि जिसकी चाल और चरण में क्या है, दिव्यता समाई हुई है। ऐसी आत्माओं की यह भूमि है, परिवर्तन भूमि, महामिलन भूमि, मंगल भूमि, मनोरंजन भूमि, मधुर भूमि, समर्थ भूमि, सच्चा सच्चा हरिद्वार, हरि का द्वार यहां से खुलता है, सच्चा सच्चा कुंभ मेला, सच्चा सच्चा गौशाला, यही है सच्चा सच्चा दिलवाड़ा, चैतन्य दिलवाड़ा, यही है गॉडलीहुड, क्या स्टूडियो, यही है। आज बाबा किस रूप में आया है सुबह मुरली में, बड़ा बाप और बड़ा सर्जन, सच्चा सच्चा ग्लोबल हॉस्पिटल, यहां पर इलाज होता है आत्माओं का। इसके लिए छुपाओ नहीं बीमारी को, जो है वो साफ साफ बता दो तो सर्जन इलाज करेगा, नहीं तो दिल खाती रहेगी, बीमारी बढ़ जाएगी, पद नष्ट हो जाएगा, स्वयं ही स्वयं का नुकसान कर देते हैं। जो है वो बाप को सुना दो। तो ये है ग्लोबल हॉस्पिटल, ये है पीस पार्क, ये है ज्ञान सरोवर, ये है शांति वन, ये है मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स पार्क, तपोवन, तपोभूमि, ये हैं कुंज भवन, ये हैं प्रकाश कुंज, निर्मल कुंज, शांति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस, टीचर ट्रेनिंग सेंटर। है कि नहीं? संसार की सारी टीचर्स का ट्रेनिंग किधर होता है? इसी भूमि पर होता है। ये है शांति सरोवर। ज्ञान सरोवर तो है और शांति सरोवर भी है, तो ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी यही है। यूनिवर्सल पीस हॉल, आनंद भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, विशाल भवन, लकी हाउस। लकीएस्ट आत्माएं जहां एकत्र हो जाए तो वो लकी हाउस ही है ना, सुखधाम है। वहां पर अच्छा अच्छा माल भी खाते हो, योगी भवन भी हो, योगी भवन और क्या है, स्वदर्शन भवन, स्व का दर्शन तुम यहां करते हो। आते ही स्व का दर्शन होता है यहां पर, ऐसा ये स्वदर्शन भवन भी है। और क्या है ये, हवाई महल, हवाई महल भी है ये। और चारों धाम यहां पर है, शीश महल है, जादू की नगरी है, और शोकेस है संसार के लिए, शोपीस है, जिसके हम शोपीस है इस शोकेस के। सच्चा सच्चा स्वर्ग का मॉडल है, स्वर्गाश्रम है, वैकुंठ है, परिस्थान है, पारसपुरी है इस संसार में, इस संसार के लिए रेस्ट हाउस है, इस संसार का टॉप का स्थान है, ऊंचा स्थान, खुशियों की खान है, आनंद की सरिता यहां बहती है, खुशी की बातें और सुख की बातें पूछनी हो तो आज की मुरली से जाओ जाकर किससे पूछो, मेरे बच्चों से पूछो, और जाओ जाकर उनसे पूछो जो मधुबन निवासी है, जो मधुबन की इस पावन भूमि का श्रृंगार है, ऐसी आत्माओं से जाकर पूछो। तो ये पावन भूमि है, पुनीत भूमि है, पुण्य भूमि है, खुशियों की खान है, आनंद की खान है, खजानों की खान है, शक्तियों की खान है, शांति स्तंभ है। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो भूलना नहीं इस वाक्य को, शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाना। बाप समान बनने की तीव्र इच्छा हो तो, दृढ़ संकल्प हो तो बाप के कमरे में आ जाना। व्यर्थ संकल्प तेज चलते हो तो, और हिस्ट्री हॉल में पहुंच के क्या करना, व्यर्थ संकल्प चल रहे तो यज्ञ का इतिहास, यज्ञ के इतिहास को देखो, एक एक चित्र को देखो, एक एक चित्र को दिल में समालो, तो व्यर्थ ही समाप्त हो जाएगा। समर्थ स्मृतियां है, यादों की बारात आएगी तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। उदास हो जाओ तो झोपड़ी में पहुंच जाओ, क्या करने के लिए, बाप से रुरियान करने के लिए। आंसू भी बहा दो, आंसुओं की टंकी तो हमेशा भरी है। तो ये भूमि मनोरंजन भूमि है, ये भूमि मधुर भूमि है, ये भूमि त्रिलोक है, ब्रह्म भूमि, ब्रह्मा भूमि, ऐसी शक्तिशाली भूमि, ऐसी पावरफुल भूमि, ऐसी बलशाली भूमि, ऐसी फॉरेस्ट ऑफ क्या, मधुबन अर्थात फॉरेस्ट ऑफ हनी, मधु और वन, मधु और वन। मधुरता भी है तो वैराग भी है। राज ऋषियों की भूमि है, तपस्वी भूमि है। वहां दिखाया है जो ऋषि मुनि होते थे, जहां अपने आश्रमों में तपस्या करते थे, अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाए तो हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाता था। शास्त्रों में दिखाया विश्वामित्र का परिवर्तन कैसे हुआ, वो तो राजा रहता है, जब वशिष्ठ के आश्रम में जाता है और देखता है कि हिंसक प्राणी एक दूसरे के साथ, गाय और शेर एक साथ, ऐसी अद्भुत घटनाएं वहां देखता है, तो उसके मन में भी संकल्प होता है कि क्या मैं करूं और ऐसा प्रभाव में मुझ में भी आ जाए। तो इसकी कथाएं तो शास्त्रों में भी, जहां भी जो तपस्या करता है, तपस्या जिस स्थान पर की जाती है उस स्थान के वायुमंडल, उस स्थान का वातावरण ही परिवर्तन हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो यहां तो हर समय तपस्या चालू है, ऐसा कौन सा समय है बताओ जहां पर मधुबन में तपस्या कोई नहीं कर रहा है? शायद ही 24 घंटे में ऐसा कोई समय है जो बाबा को याद नहीं कर रहा, ऐसा शायद ही कोई समय है कि जो बाप से रूहरियान नहीं कर रहा है, ऐसा शायद ही कोई समय है जो 5 स्वरूपों का अभ्यास नहीं कर रहा, 3 स्वरूपों का अभ्यास नहीं कर रहा, अशरीरीपन का अभ्यास नहीं कर रहा, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास नहीं कर रहा, शायद ही ऐसा कोई समय है। या फिर देह से परे ज्ञान के विचार सागर मंथन में डूबा ना हो, ऐसा कोई समय नहीं। या फिर उसकी सेवा में ऐसे मगन है कि सुध बुध सब विसरी, ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर रहने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और भाग्य का वर्णन कौन कर रहा है? स्वयं भगवान, स्वयं भाग्य विधाता भाग्य का वर्णन कर रहा है। तुम किसी से मिलने नहीं जाते, बाबा ने क्या कहा, सब तुमसे मिलने यहां आते हैं। मिलन महफिल यहां निरंतर चलती रहती है, लगी पड़ी है, ताजा ताजा माल, मिलन महफिल, संसार के सारे समाचार सबसे पहले यहां पहुंचते हैं, परंतु यहां से भी समाचार बहुत जल्दी जाते हैं, छोटी बात भी बड़ी हो जाती है यहां से जाकर, क्योंकि बड़े आदमी हो। महान भूमि पर रहने वालों की स्थिति भी महान चाहिए, ऊंची पहाड़ी पर रहने वालों की स्थिति भी ऊंची चाहिए। जब ऊंची ही स्थिति चाहिए तो नीचे क्यों आ जाते हो? नीचे आने की आवश्यकता क्या है? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वातावरण, कोई चीज नीचे न लाए। कौन सी चीज नीचे लाती है? चेकिंग करो। पॉइंट तो बहुत है, कमाल उस समय की है जब पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाए तो नीचे ना आए, इसकी युक्ति सोचो, इसका कोई इन्वेंशन ढूंढो। ऐसी कौन सी बातें हैं जो नीचे ले जाती है? बाबा ने कहा इन सब बातों में से कोई एक बात भी अगर याद रखे तो नीचे नहीं आ सकते, परंतु बुद्धि में ज्ञान की यह सरिता बहती रहे, यहां रहते हुए यहां का, यहां के महत्व को हृदय में कम ना होने देना, मुरली के महत्व को कम ना होने देना और स्थान के महत्व को कभी कम ना होने देना। क्योंकि हम जो समझते हैं स्थान का जितना महत्व है उससे कई गुना अधिक है। शायद इतिहास में इस आबू पर्वत पर, ये आबू पर्वत कभी तीर्थ ना रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता, शायद इतिहास में भी उसका वर्णन नहीं हो, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे सोचता हूं कि इस स्थान पर शायद ही संसार की कोई महान आत्मा होगी जो यहां नहीं आई होगी। किसी ना किसी समय, किसी ना किसी वक्त कोई हरेक धर्म स्थापक, हरेक तीर्थंकर, अवतार, इनकार्नेशन या तपस्वी यहां पर शायद किसी ना किसी समय आकर गए ही है। यहां तक कि जो महाचोटी है जहां पर विवेकानंद की एक गुफा बनी हुई है, उनको जो विदेश जाने की प्रेरणा आई, जो खत्री के जो महाराजा का जो उनको संदेश इसी भूमि पर आया, वो पहली आत्मा थी जो यहां से विदेश गई है और भारत का संदेश लेके आध्यात्मिक गुरु बनकर, तो ये तो अध्यात्म की गुरु है। अगर संसार प्रश्न है तो मधुबन उसका उत्तर है। हल, हर प्रश्न का हल यहां मिल जाता, गीत में सुना ना अभी, हल हर प्रश्न का यहां है। अगर हमारे चित्त की धारा, हमारी स्थिति ऐसी अव्यक्त हो जाए, जो अव्यक्त प्रवाह यहां बह रहा है उससे ट्यून हो जाए, अट्यून हो जाए, तो हम वही सारी चीजें कैच कर सकेंगे। ऐसी शायद ही कोई गली है और शायद ही कोई कोना है जहां पर वह वाइब्रेशंस नहीं है। तो जो यहां आते हैं उनका कितना महान पार्ट है, क्या कहा बाबा ने, जो यहां आते हैं उनका कितना महान पाठ है। तो जो यहाँ रहते हैं उनका कितना महान होना चाहिए, जो यहाँ आते हैं वो स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं, तो यहाँ जो रहते हैं वो कितने भाग्यशाली है, जो यहाँ आते हैं स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं, वो कितने अनुभव अपने अंदर करते हैं, तो जो यहाँ रहने वाले हैं उनको कैसे अनुभव होने चाहिए। वो तो अनुभव की जैसे खान बन जाए, जो रहते ही तपस्या भूमि में है, जहां तपस्या बह रही है, तपस्या की नदियां तो यहां निरंतर बह रही है, उन नदियों की गुंजन, वो कलकल निनाद करते झरने यहां पर निरंतर बह रहे हैं, उनको सुनना, उनमें समाना। तो दूसरी आत्माओं का इतना महान पाठ, दूसरी आत्माएं जो आ रही है उनको इतना अनुभव, वो इतना भाग्यशाली समझते, तो यहां रहने वाले कितने ना भाग्यशाली है। ऊंचा स्थान है, ऊंची पहाड़ी पर है तो स्थिति भी ऊंची चाहिए, श्रेष्ठ स्थान है तो स्थिति भी श्रेष्ठ चाहिए। बाबा ने कहा चेकिंग करो, अथकपन का सर्टिफिकेट तो दे दिया, अथकपन की खुशबू तो बहुत है, परंतु साथ साथ क्या चाहिए, एक रस, सारे रस एक में, सारा आनंद एक में, सारा संसार एक में, सारे संबंध एक से, एक के ही प्रति समर्पण भाव, सब कुछ एक के लिए, एक में समाये हुए, ऐसी हमारी अंदरूनी आंतरिक स्थिति हमें बनानी है। आज मुरली में भी कहा ना, निर्मोही बन जाओ, व्यक्ति से भी कोई लगाव ना हो, आसक्ति ना हो, ऐसी जो स्थिति है वैराग वाली, वो बाप को पसंद है। न्यारा पुरुषार्थ किसका है, न्यारा बनने का, प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं है, वो स्वतः ही बन जाएंगे। तो और क्या महिमा गाई बाबा ने कल की मुरली में, मधुबन की कुछ तो हमने गिनाई, और बताइए। मधुबन डबल लकीर, मधुबन निवासी अर्थात डबल लकीर। कौन सी डबल लकीर, एक तो मधुबन ही लकीर है, मधुबन ही किला है, ब्राह्मणों की हट्टी है, ब्राह्मणों का किला है, अंतिम निवास स्थान, सुरक्षा कवच है यहाँ पर, यहाँ माया वार नहीं कर सकती, संगठन है, संगठन है, समूह है श्रेष्ठ आत्माओं का, तो इस किले के अंदर विकर्म नहीं हो सकते, इतना स्थान का महत्व है। तो डबल लकीर, डबल समझदार, डबल समझदार अर्थात करने से पहले सोचने वाले, जो संकल्प आ रहा है, जैसे वो राजा रजवाड़े कुछ भी स्वीकार करने से पहले चेकिंग करते हैं, तो तुम्हें भी कुछ भी स्वीकार करने से पहले चेकिंग करनी है, मिलाना है पहले फिर स्वीकार करना है। कौन कौन सी चीजें, संकल्प, ये जो संकल्प है ये बाप समान है, ये जो बोल है ये बाप समान है, ये जो कर्म है ये बाप समान है, ये जो संबंध संपर्क है बाप समान है, ये जो संबंध बना रखा है किसी आत्मा से, क्या बाप के ऐसे संबंध है, क्या इन संबंधों में कहीं विकारों की बदबू तो नहीं है, दैहिक भान तो नहीं है, क्या ये वही दिव्य संबंध है जैसे बाप चाहता है, इनमें लौकिकता की बदबू तो नहीं है। संबंधों को भी पवित्र बनाना, पवित्रीकरण, उदात्तीकरण, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स, ये भी कार्य हमें करना है। तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, बाबा ने प्रतिज्ञा की याद दिलाई है यहाँ पर, जो सोचने को दिया है वही सोचेंगे, जो सुनाने को दिया वही सुनाएंगे, जो सुनाया वही सुनाएंगे, तो ये प्रतिज्ञा है, तो भूल नहीं जाना इस प्रतिज्ञा को। एक रस, सारे रस एक में समाहित हो, बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न मैं, इस स्थिति में दिन रात भी चले जाए, दिन रात भी चले जाए तो ऐसा ही संकल्प रहेगा कि दिन रात चले जाए। मौजों के दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी ना थम जाए हरदम, गर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे। कितना सुंदर गीत है। गर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक देंगे दिन ये सुहाने। तो दिन रात बीत जाए इस मिलन में, महान मिलन, श्रेष्ठ मिलन, अमूल्य मिलन, सुखदाई मिलन, मधुर मुलाकात, गोल्डन चांस, अचानक की लॉटरी, ऐसा ये अद्भुत वंडरफुल मिलन, कल्प में एक बार होने वाला मिलन, फिर नहीं होगा। लिफ्ट की गिफ्ट बाबा यहां सुना रहे। बाबा ने कहा इसके लिए अभ्यास ही मशीनरी है, इसको अपना निजी स्वभाव संस्कार बना लो। किसका? किसको? चेकिंग का, कि जो संकल्प आ रहा है वो जैसे भोजन है, वो संकल्प कैसा है, उस संकल्प की चेकिंग, संकल्प ही बीज है, उस बोल की चेकिंग, उस कर्म की चेकिंग, भूल ना हो ये ध्यान रखना है। आज की मुरली में है ना, और भूल हो भी जाती है तो क्या करो, बाप को सच सच सुना दो, साफ साफ बता दो, माफ हो जाएगा। हल्के हो जाएंगे, माफ, कृपा, दया, आशीर्वाद, ड्रामा में ये सारे शब्द नहीं है, हल्के जरूर हो जाओगे, फिर वो गलती नहीं करोगे। प्रायश्चित और पश्चाताप, ये दो शब्द है हिंदी में, पश्चाताप करना, प्रायश्चित उससे भी बड़ा शब्द है, फिर कभी वो गलती ना हो। अगर ये जान लिया ये गलती थी, श्रीमत की अवज्ञा थी, तो ये कार्य कहा है। तो क्या कहा बाबा ने, ये एक होमवर्क है मुरली का, संकल्पों की चेकिंग, चेकिंग और फिर स्वीकार। दूसरा एक होमवर्क है मधुबन निवासी होने का नशा। बाबा ने एक जगह पूछा है पर्सनल मुलाकात में, नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता है? जैसे बाप आपकी श्रेष्ठता को जानते, वैसे तुम स्वयं अपनी श्रेष्ठता को जानते हो? संगठन है तो बातें तो आएंगी। अगर कोई ये सोचे कि बातें चली जाए फिर मैं आगे बढ़ू, फिर बाप को याद करूं, तो हो सकता है? बाप को याद करना ही किस लिए है? ताकि बातें समाप्त हो जाए। कोई रास्ते पर चलने वाला अगर सोचे कि रास्ता आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ू, तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई मरीज सोचे, एक मास से बीमार है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, एक मास से बीमार है, एक मास से खांसी है, एक मास से बुखार है, उठ भी नहीं सकता है बिस्तर से, और कहे कि पहले ठीक होने दो फिर जाऊंगा डॉक्टर के पास, तो क्या कहेंगे? डॉक्टर को घर लेके आओ। एक बार एक डॉक्टर रहता है, इतना परेशान हो जाता है, जहां पर भी वो जाता है, लोग जिस भी पार्टी में जाता है, जिस भी फंक्शन में जाता है, तो लोग फटाफट आ जाते हैं, मेरे को ये तकलीफ है, उसको ये तकलीफ है, उसको ये तकलीफ है, इतना परेशान होता है। अब क्या किया जाए? जहां पर भी जाऊंगा, ये तो सारा फ्री में इलाज करा लेते हैं मेरे से। तो वो वहां पर उस पार्टी में देखता है एक वकील भी खड़ा है, तो कहता है कि इसको भी ऐसी समस्या तो होती होगी। तो वकील के पास जाता है और पूछता है, क्या आपको भी ऐसी परेशानी आती है कि जब भी कोई पार्टी में जाओ तो कोई ना कोई राय पूछ लेता है, इसका क्या किया जाए, मकान का क्या करे, इसका क्या किया? वो कहता है, हाँ मुझे भी ऐसी समस्या आती है, पर मैं फिर एक नियम बनाया है मैंने, क्या करता हूँ, दूसरे दिन जिन्होंने कंसल्टेशन किया उनकी एक लिस्ट बनाता हूँ और उनके घर में बिल भेज देता हूँ एक एक। तो फिर ये डॉक्टर सोचता है बहुत अच्छी युक्ति है, तो वो भी जितने कंसल्टेशन, जितने पेशेंट को उस पार्टी में मिलता है, दूसरे दिन लिस्ट बनाता है, लिस्ट बना ही रहा रहता है, तो वहां से कोर्ट से प्यून आ जाता है, वो कहता है क्या है? बोलते डॉक्टर को, वकील साहब ने बिल भेजा है। राय दी थी ना कल, तो उसका ये बिल। तो हम बात कर रहे थे, अगर कोई मरीज ऐसा कहे कि ठीक हो जाऊं फिर जाऊं, तो कभी ठीक नहीं हो सकता है। मुझे याद है कई सालों पहले हम जो है इस गांव में सेवा के लिए जाते थे, ये नीचे जो है ना, निचलागढ़, चंडेला और आसपास के कई सारे गांव है, तो वहां पर हमने देखा है, एक बार एक मरीज दूर बैठा रहता था, हम गाड़ी से जाते थे, वो चलता फिरता दवाखाना था, तो हमेशा दूर बैठा रहता था और कभी पास नहीं आता था और ऐसे छुपा के रहता था अपने चेहरे को, ये नीचे का पूरा भाग। तो हमको एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या है ये, क्यों छिपा के रखता है। तो हमने उसके पास गया, बोला क्या तकलीफ है, बोले कुछ तकलीफ नहीं है, सब ठीक है। बोले ये छुपाया क्या है, वो बोले कुछ नहीं बस ऐसे ही। देखा तो उसको इतनी बड़ी गांठ थी यहाँ पर और उसमें से पूरा पस टपक रहा था। फिर हमने जबरदस्ती उसको पकड़ के ऊपर लेके आए, फिर यहाँ पर डॉक्टर अशोक मेहता आए थे, उन्होंने उसको ऑपरेशन किया था, वो फिर ठीक हुआ था। पूरी गांठ निकाली थी इतनी बड़ी, पूरा नीचे छाती से नीचे तक लटक रही थी और उसमें पस हो गया था, कैंसर की थी गांठ। फिर हम उसको पहुंचा के आए थे, उसका स्वागत सत्कार भी हुआ था तब गाड़ी में ही, गांव वाले हार पहनाया था। तो रास्ता आगे नहीं बढ़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। रास्ता तो पीछे रह जाएगा, साइट सीन पीछे रह जाएंगे, हमें आगे बढ़ना है। बातें तभी खत्म होगी, बातों के चिंतन से बातें खत्म नहीं होगी, क्योंकि बातें है तो बाप नहीं है। द्वापर में भी जब रामायण भागवत थे वो सब क्या है, बातें। तो जब बातें थी तो बाप नहीं था, अब भी अगर बातें है, जब बाप आया हुआ है तो भी बाप वहां पर नहीं है। तो लिस्ट बनाओ उसकी भी, कौन सी बातें है। बाबा ने पूछा है ना उसी मुरली में, कौन बीच में आता है, व्यक्ति वैभव, व्यक्ति आएगा वैभव जाएगा, वैभव आएगा व्यक्ति जाएगा, व्यक्ति वैभव विघ्न व्यर्थ संकल्प, कौन आता है बीच में। व्यर्थ संकल्प भी है तो वहां दो हो गए, प्रेम गली अति सरकरी, जामे दो ना समाए, दो नहीं हो सकते इस गली में, बहुत ही तंग गली है ये, चुस्त गली है, एक ही हो सकता है इसमें। तो बाप और मैं, तीसरा ना कोई, इस बीच में जो बातें आती है उनको हटाओ, उन बातों के पीछे योग को बढ़ाओ तो बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परंतु फिर भी बाबा ने कहा माया तो आएगी, कहां से आएगी, छत से, यहां से, वहां से, खिड़की से, दरवाजे से, कोने से, बहुरूप से आएगी। और जैसे जैसे योगी बनेंगे और ज्यादा आएगी, जैसे जैसे हम योगी पावरफुल बनते जाते हैं माया भी पावरफुल बनती जाती है। महावीर के साथ महावीर, पहलवान के साथ पहलवान, ताकतवर के साथ ताकतवर, हिम्मतवान के साथ हिम्मतवान, योगी के साथ योगी दबंग के साथ दबंग, ऐसे माया के रूप है। माया भी कोई हिम्मत हारने वाली नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। पिछले संडे की मुरली में था ना, मित्रता निभाई है उससे, मित्रता निभाने का इरादा है, पर वो भी तुम उसको एक दिन धन्यवाद करोगे, वो भी तुम्हारी दास बन जाएगी। पांच तत्व जल्दी जल्दी और अच्छे अच्छे महल तैयार करेंगे, पांच विकार पांच दिव्य गुणों में रूपांतरित हो जाएंगे। तो दस, दस का जोर, दस नाखून। तो ये इस मुरली का बातों के लिए दूसरा एक होमवर्क है कि बातों को समाप्त करो, बातों को हटा दो। और टाइम वेस्ट करने की भी बात कही है बाबा ने, किस में टाइम जाता है, तन मन व्यक्ति वायुमंडल, इसमें तो समय नहीं जाता है। बीमारी तन में आ गया वो, तो ना ही हमारा समय व्यर्थ जाए, बातें ना बीच में आए। और अगर नीचे आ जाते हो तो कोई युक्ति सोचो, कोई इन्वेंशन सोचो, ऐसा कौन सा संस्कार है जो बार बार नीचे गिराता है, ऐसा कौन कौन सी आदत है, बात है, बुद्धि कौन से सब्जेक्ट में बिजी है कि जो हमको नीचे गिराती है, उसके ऊपर चिंतन करो और उसको वहीं के वहीं समाप्त करो। युक्ति सोचो, ढूंढो, किसी से पूछो, मुरलियों में ढूंढो, अव्यक्त वाणियों में ढूंढो, योग में टचिंग होगी अगर सच्चाई है हृदय में तो उत्तर आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, किसी ना किसी के द्वारा आएगा, किसी ना किसी के बोल के द्वारा आएगा, किसी ना किसी क्लास में उत्तर मिलेगा, किसी ना किसी मुरली में उत्तर आएगा। ढूंढना है, नॉक एंड इट शैल ओपन, सीक एंड ई शैल फाइंड, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, तब तक नहीं खुलेगा। तो ये एक मुरली का होमवर्क था। फिर एक दूसरा होमवर्क था फॉलो फादर का। फॉलो अर्थात अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन, ऐसे तीन अर्थ हिंदी भाषा में दिए जाते हैं। तो फॉलो करना, नक्शे कदम पर चलना, नकल करना, अनुकरण करना, अनुसरण करना, उसी मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर वो चला है। किन किन बातों पर? हर बात में, हर सब्जेक्ट में, ज्ञान में, योग में, धारणा में और सेवा में। चारों ही सब्जेक्ट को चेक करो कि इनमें कितना फॉलो फादर है। जितना फॉलो फादर रहेंगे वही आधार है क्या बनने का? महाराजा, महारानी, तख्तनशीन, रॉयल फैमिली में कौन आएंगे, पहले में कितने आएंगे, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली कौन सी, दूसरी लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली कौन सी, सेकंड लक्ष्मी नारायण और आठवां लक्ष्मी नारायण। ये सारी बातें बाबा ने कहा ये रहस्य है, इस पर सोचना, इस पर चिंतन करना, ये सारे राज है। फॉलो फादर करने का भी राज है। तो हर बात में फॉलो, हर संकल्प में फॉलो, हर संस्कार में फॉलो, जन्म में फॉलो, बचपन में फॉलो। किसका बचपन? ब्रह्मा बाबा का। सेवा में फॉलो, अंतिम स्थिति में फॉलो। जन्म हुआ और जन्मते ही कैसे नशा चढ़ गया, ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा चढ़ गया कि मैं क्या बन रहा हूं जन्मते ही। और बचपन, ज्ञान का बचपन भी देखो कितना पावरफुल था। युवा की सेवा की कितनी लगन, और अंतिम स्थिति तो संपूर्ण उपराम, जैसे किसी से कोई लेना देना नहीं। पांचों ही चीजों में फॉलो फादर। स्थापना में फॉलो फादर, पालना में फॉलो फादर, सहयोग में फॉलो फादर। सहयोग भी कितना दिया, कितना समय दिया, परसेंटेज में दिया, उसमें भी फॉलो। विघ्न विनाशक स्वयं कितने बने और दूसरों के विघ्नों को कितना हटाया, इसमें भी फॉलो फादर। कितनी सारी, 12-13 बातें हैं, सभी में फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए जिसको फॉलो करना है सबसे पहले उसका चरित्र अध्ययन करना पड़ेगा। केवल फॉलो फादर करने के नारे लगाने से नहीं होगा। फॉलो तो करना है पर क्या? हमारा बाबा आ गया, मेरा बाबा, मेरा बाबा। केवल नारे लगाने से नहीं होगा, पर करना होगा, जानना होगा, समझना होगा, अनुभव की लेन देन करनी पड़ेगी, पूछना होगा जो यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों से, उनके अनुभवों को साकार की जिन्होंने पालना ली है उनसे पूछना होगा, किताबों से ढूंढना पड़ेगा, अव्यक्त वाणियों से ढूंढना पड़ेगा। बाबा ने कहा है 69 के एक संदेश में मधुबन के लिए, ब्रह्मा की के शरीर के पांच तत्व, 18 जनवरी 1969 के किसी एक संदेश में, जो 13 संदेश है उसमें एक संदेश में है, शरीर के पांच तत्व, पांच तत्वों में समाकर पांच तत्वों को पावन करेंगे, ये वो भूमि है। ये उस आत्मा के लिए कहा हुआ है, तो वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसको हमने कितना जाना है, इसके लिए ईश्वरीय विद्यार्थी जो होगा वो निरंतर अध्ययनशील होगा, निरंतर स्टडी करते रहेगा, चरित्र की, चाल चलन की, कौन से ऐसे कर्तव्य किए कि जिसकी भगवान इतनी महिमा कर रहा है, ऐसा क्या किया कि भगवान स्वयं इतनी महिमा कर रहा है। विचारणीय वस्तु है ये। तो ये सब बातों में क्या करना है? फॉलो फादर करना है। ये भी एक मुरली से होमवर्क है। तो मधुबन की महिमा, मधुबन निवासी होने का नशा, मधुबन निवासी, हरेक मधुबन निवासी जो भी यहाँ, चाहे सेवाधारी हो, चाहे निवासी हो, चाहे कोई भी हो, जो इस भूमि पर है वो मधुबन निवासी है। जो यहाँ नहीं भी है पर अपनी मधुबन की यादों को संजोए हुए है वो भी मधुबन ही है। मधुबन की परिभाषा क्या है? मधुबन किसको कहेंगे? कमल भाई, जो मन से मधुबन में रहता है वो मधुबन में है। मधुबन, मधु समान जिसकी स्थिति है। आज कहा ना बाबा ने, सर्विसेबल बच्चे कैसे होंगे? बहुत मीठे होंगे। जो ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं, जो सर्विसेबल है, जिनकी बुद्धि में केवल बाप और वर्षा, जिनकी बुद्धि में केवल बाप और सेवा है, वो सभी मधुबन निवासी है, वो सभी मधुबन में ही है, चाहे शरीर से यहाँ नहीं है। बाबा हमेशा अव्यक्त वाणियों में किसको देखते हैं? जो यहाँ है ही नहीं। एक तो सबसे पीछे जो है उनको याद करते हैं, और ज्यादा याद और किसको करते हैं? जो दूर दूर है, जो यहाँ है ही नहीं हॉल में सभा में, उनको भी याद करते हमेशा। तो मधुबन की परिभाषा बहुत गुह्य है। मधुबन केवल चार दीवारी नहीं है, मधुबन तो अव्यक्त वो वायुमंडल है। जो मन से यहां मधुबन में है वो मधुबन निवासी है। जिसके मन में मधुबन है वही सच्चा मधुबन है। कोई यहां रहकर भी मधुबन में नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। यहां है परंतु बुद्धि बाहर, यहां है पर यही की चोरी करते हैं। तौबा तौबा, क्या कहा आज बाबा ने, बुद्धि में किसी की शल ऐसी बुद्धि ना हो। महापापी, आत्म अधम अधम गति को प्राप्त होते हैं। यहां रहकर यहां की ही जो चोरी कर ले उसको मधुबन निवासी नहीं कहेंगे। सूक्ष्म चोरी तो बहुत ही सूक्ष्म चीज है, सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चोरी है कौन सी, इस देह को अपना समझना। ये सबसे चोरी की सर्वोत्तम सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा ये यहां आती है। बाकी तो स्थूल चोरियां तो वो है संसार की, वो तो छोड़ो, परंतु ये चोरी सबसे सूक्ष्म है। अगर हम अपने ही शरीर को देखें, अगर माताएं अपने बचपन से लेके अब तक के शरीर सारे रख दिए जाए तो कहेंगे ये मैं हुई नहीं, इतने सारे शरीर अलग अलग है। बचपन का शरीर, थोड़ा बड़े हुए तब का शरीर, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ शरीर, फिर मां के स्वरूप का शरीर और अब का शरीर। शरीर भी बदल गया परंतु हमेशा हमने क्या कहा है, यही मेरा शरीर है। यहां तक भी नहीं, मैं ही शरीर हूं यहां तक भी था। आज बाबा ने कहा ना, सोए, सोने की परिभाषा दी है, सोना अर्थात देहभान, जगना अर्थात आत्माभिमान, ये परिभाषा दी है। पाश्चात्य जगत का एक बहुत बड़ा अभिनेता था, फिल्म एक्टर, जिसने अपनी जीवन कहानी लिखी। अमेरिका का एक एक्टर, उसने अपनी जीवन कहानी लिखी। उसमें एक बहुत ही अद्भुत सी घटना उसने लिखी। उसने लिखा कि मैंने अपने जीवन में इतने पार्ट प्ले किए, कभी शेक्सपियर की के ड्रामा का कोई एक्टर बना, कभी मिल्टन के ड्रामा का बना, कभी किसी का बना, कि अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इनमें से कौन हूं। इट वॉज सो ईजी टू स्टेप इन टू दैट कैरेक्टर, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। मैं इसमें से हूं कौन, इतने सारे मैंने पार्ट बजाए, और जब मैं ये पार्ट बजाता था, जब ये किरदार अदा करता था, मुझे लगता था मैं यही हूं। कभी पुलिस इंस्पेक्टर बना, कभी डाकू बना, कभी कुछ बना, इतने अलग 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 पार्ट प्ले किए, और हमेशा मैंने यही सोचा कि मैं ये हूं। पर अब मैं सोचता हूं कि मैं कहां खो गया इनमें से। अब अपने ही जीवन को बचपन से अब तक अगर देखो तो हम भी कितने पार्ट प्ले कर रहे हैं। बचपन को छोड़ो, आज के इसी दिन को देखो, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ प्ले किया वो क्या मैं था, क्या खंडित व्यक्तित्व है, दिखाने वाला कुछ, अंदर कुछ, मुखौटे पहने तो नहीं है, परसोना कुछ और, मुखौटा कुछ और पहना है, मास्क पहन के तो नहीं घूम रहे, ऊपर से हम दिखा रहे हम योगी हैं और हम तपस्वी हैं, और अंदर क्या क्या बनाया आज, मालपानी उसकी थाली में खीर कहां से आई। हम कहते हैं हमने सारा संसार के सब छोड़ दिया है, पर यहां आकर आसक्तियां उत्पन्न हो रही है, उसको क्या कहेंगे। कहीं हम ऐसे खो तो नहीं गए, हमारा व्यक्तित्व खंडित तो नहीं हो गया है, स्प्लिट पर्सनालिटी तो नहीं है हम, दिखाने का कुछ, अंदर कुछ, संगठन में कुछ, अंदर कुछ, ऐसे तो नहीं है, ऊपर से वैराग अंदर में विलासिता, ऐसा तो नहीं है, अंदर में राग, अंदर में लगाव संसार से, ऊपर से हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आत्म प्रवंचना तो नहीं कर रहे हैं, सेल्फ डिसेप्शन तो नहीं हो रहा है, कौन किसको फंसा रहा है, कौन किसको डिसीव कर रहा है, ठग रहा है, ये चेकिंग करनी है। जो हूं आज के वरदान में ना, जो हूं जैसा हूं, अपने असली स्वरूप का निश्चय और सदा विजय की स्मृति अगर ये रहे तो नशे के स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। कितना अच्छा वाक्य है, अपने असली स्वरूप की का निश्चय, क्या मैं वही हूं उसी स्वरूप में, उसी स्थिति में, संबंध संपर्क में आ रहा हूं, या देहिक दृष्टि जा रही है, देह की तरफ आकर्षण हो रहा है, देह खींच रहा है, देह की तृष्णाएं, देह की वासनाएं, देह की इच्छाएं मन को आंदोलित तो नहीं कर रही? चेकिंग करो, मन को उद्विग्न तो नहीं कर रही है, मन में हलचल तो नहीं उत्पन्न कर रही है? चेकिंग करो, स्थिर कर दो मन को। इस संसार को असार समझना और देह को मिट्टी समझना, ये वैराग की परिभाषा है। वैराग अर्थात संसार असार और देह मिट्टी, इस स्थिति में स्थित हो जाना ही वैराग है। अपने असली स्वरूप में स्थित होना, जो खंडित व्यक्तित्व है, बाबा ने एक शब्द, आज की मुरली में एक शब्द आया है सालीम। सालीम शब्द का वास्तविक अर्थ होता है अखंडित, जो खंडित ना हो, जो संपूर्ण है उसे सालीम कहा जाता है, अनडिवाइडेड, वो है सालीम शब्द का अर्थ। मुरली में अच्छा लिखा हुआ है, परंतु वास्तविक अर्थ सालीम का होता है अखंडित, ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो। तो सेल्फ डिसेप्शन अगर कहीं हो रहा है, उससे स्वयं को मुक्त करना है, किसी भी बात में, फिर वो चाहे योग में, चाहे ज्ञान में, चाहे सेवा में। हम जो सेवा कर रहे हैं, कहीं वो दिखावे वाली सेवा तो नहीं है, या ऐसी इच्छाएं तो नहीं है कि ये सेवा करे तो हमारी तारीफ हो जाए, महिमा हो जाए, नाम हो जाए, गुणगान हो जाए, बड़े हमारी प्रशंसा करे, दादी हमारी प्रशंसा करे, ये भाव तो वहां समाहित नहीं है। सूक्ष्म चेकिंग करनी है, हमारी चेकिंग भी धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाए। अध्यात्म कोई आडंबर नहीं है, अध्यात्म दिखावा नहीं है, शो नहीं है, यह जीवन है। हम जो है, जैसे है, वैसे ही आए। हम मानेंगे कि हम में बहुत सी कमियां हैं, पर परंतु प्रयत्न यदि करें तो हो सकता है हम इस झूठ से, इस आत्म प्रवंचना से, सेल्फ डिसेप्शन से बाहर निकल आ जाए। तो ये बातें कुछ बाबा ने कही, और किसी को कोई बात याद आ रही है तो कहिए। आज की मुरली से बहुत सारी पावरफुल पॉइंट्स हैं आज की मुरली में। और कौन सी पॉइंट्स है? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं? सुखदाता के बच्चे दुख की लहर कैसे आ सकती है? आ नहीं सकती। बाबा ने एक तो चोरी के विषय में कहा, मोह के विषय में कहा, क्रोध के विषय में कहा, पढ़ाई के विषय में कहा, कितनी सारी बातें कह दी। चुप रहना, तांबा कौन सा गरम, क्रोध, क्रोध दिव्य। बहुत सुंदर एक बात कही है बाबा ने, याद में रहो तो दिव्य गुण ऑटोमेटिकली धारण हो जाएंगे। एक एक गुण को पकड़ पकड़ के अभी 36 हीरे लगाने हैं, 36 डायमंड कैसे लगाएंगे? तो याद में रहो तो निकल निकल के हमारे ताज में लग जाएंगे सारे के सारे। तो डायमंड, और क्या कहा आज माताओं की तरफ से? राजाई तिलक, कौन सा तिलक नहीं लगाना है? ना फरमान बरदार बेवफादार, बड़ा ही पावरफुल शब्द है। कौन सा तिलक नहीं लगा देना है? बेवफादार, ना फरमान बरदारी का तिलक, राजाई का तिलक लगाना है ना, तो अवज्ञाएं नहीं होनी चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान दो। चार्ट रखो, कौन सा चार्ट रखो? याद का, दिव्य गुणों का। ये चार्ट तो बाबा ने अव्यक्त वाणी जो अभी चली थी उसमें भी कहा था कि चार्ट को बढ़ाते जाओ, याद का चार्ट बढ़ते जाए। ये एक बात कही, और कैरेक्टर्स, और बाप समान प्यार का सागर बनना है, स्नेह का सागर। उसके पास जैसे स्नेह के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। सोचो अगर बाप के सामने जाकर कोई क्रोध करे, अव्यक्त बाप दादा के सामने, तो क्या रिएक्शन होगी, क्या कहेगा? उसके पास देने के लिए स्नेह के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, क्या देगा वो उसे? चाहे कोई भी आ जाए, चाहे स्नेह से आ जाए, चाहे क्रोध से आ जाए, वो उसको ज्ञान ही नहीं, इतना सागर है वो कि उसमें अपनी लहरों में समा देगा सबको। ऐसा सागर बन जाना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। तो ये एक पॉइंट कही, और क्या कहा आज? छिपाना नहीं है सर्जन से, सब कुछ उसको में आ जाएंगे। तो जो भी है, जैसे भी है, जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। अमृत वेले बाबा को याद करते समय ये वाक्य रोज बोल देना है कि जो हूँ, जैसा हूँ, चाहे कितने ही अवगुण है, परंतु हूँ तुम्हारा, तुमने ही चुना है, तुम्हारा ही स्वीकार किया हुआ अमूल्य रतन हूँ, अब झेलो। घे जो मारा गुनरो सागर, अवगुण माँ बिसराजो जी, मारी प्रीत निभाजो जी। मीरा अपने एक पद में कहती है, घे जो मारा, मेरे सारे अवगुण ले लो, अवगुण माँ बिसराजो जी, गुण ले लो और अवगुण सारे विसार लो, मारी प्रीत निभाजो जी। ऐसी प्रेम में मगन है, इतने अधिकार से उसको कह रही है कि तुम ये कर दो अब मेरे लिए, तो वो कर देगा। और कोई पॉइंट पावरफुल? सारी दुनिया इस योग बल से, सारी दुनिया पावन हो जाएगी। ये योग बल ऐसा बेड़ा है कि जिससे सारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम शिवपुरी में पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह बाबा से उठ के बात करो। क्या बाबा से बात करो? ओहो, क्या करो? बड़े प्यार से बाबा से बात करो। क्या से क्या बन गए आप, हमें शिवालय ले जा रहे हो। आपकी तो कमाल है, बहुत ही ज्यादा कमाल है। मनुष्य से देवता बना, ये मनुष्य से देवता बने का बनाने का कारखाना है, ये भी मधुबन का एक नाम है, फैक्ट्री है। मनुष्य डालो उधर से कुंती माता, देवता बन के निकलते हैं। ऐसी पावरफुल फैक्ट्री है ये। फिर चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना ही काला हो, ना काला देखा, ना गोरा देखा, ना श्याम देखा, ना सुंदर देखा, मेरा है यह देखा, हरेक के मस्तक पर ज्योति बिंदु देखा। कैसा भी हो वो, किसी भी जाति का, पाति का, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं देखा, बाप ने क्या देखा, मेरा है यह देखा, सवेरे सवेरे देखा। तो बाप से रुहरियान करना। और भी कोई पॉइंट है? बाप और शिक्षक को प्रत्यक्ष करोगे वरदान में, अगर ये बातें कर दो तो बाप और शिक्षक प्रत्यक्ष हो जाएगा सूरत से। प्रत्यक्ष करना है चलन से, सूरत से, सीरत से, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और तीनों ही नाराज हो जाएंगे अवज्ञा की, तो बाप टीचर और सदगुरु, और बाप एक बार नाराज हो गया तो कैसे मनाओगे उसको? तो इस मुरली से, आज की मुरली, कल की मुरली, रोज की जो मुरली है, उसमें से उसका गहराई से अध्ययन करना, गहराई से उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, कुछ बातें याद रखना, स्मृति में रखना और उसमें खो जाना। तो अभी एक संकल्प लेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप है और दूसरा मैं हूं बस, और तीसरा कोई नहीं है। इसी में बाबा कहते हैं दिन रात खो जाओ, संकल्प हो, इसी संकल्प के साथ स्थिर कर दो अपने चित्त को। ओम शांति।
से भर ली